17 नवंबर 2011 लेक्चर नंबर 2 5 समवाय ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्तान् नमो सिद्धाणम् नमो आयरियाणम् नमो वच्छायाणम् नमो लोये सवसाहुवम् जम जस जम्मि देशे जेन विहानेन जम्मि कालम्मि नादम जिनेन नियदम् जम्मं वा अहवमरणं वा संतस्तम्मि देशे तेन विहानेन तम्मि कालम्मि कोशकदिवारे दुम् इंदो वा कह जिनींदो वा देवं जो निश्चय दो जानदि दौवानि सव पच्छाये सो सद्दिठि सुद्धो जो संकदि सोहु कुदिठि। चहो द्रव्यों की जो कारण कार्य व्यवस्था है उस संबंधी जो कोई जिनेन्द्र भगवान द्वारा कथित सिद्धांत है उनका अभ्यास करते हुए अभी हम 5 समवायों की बात देख रहे थे। जब जब कार्य होता है यानी हर समय कार्य होता है प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना तो उसमें ये 5 कारणों का समूह स्वयं आ मिलता है। उसमें तो स्वभाव है, पुरुषार्थ है, काल लब्धि है, होनहार है और निमित्त है। तो पहले 4 हमने जो अभी नाम लिए वो तो स्वद्रव्य में है, उपादान में है और निमित्त नाम का परिद्रव्य है, वो भी अपनी अपनी पर्याय वहाँ उसकी चल रही है। तो निमित्त संबंधी हमने बहुत सारी बातें देख ली है। अब यहाँ थोड़ी देखकर फिर आगे बढ़ते हैं। हमने सुबह अंतरंग और बहिरंग ऐसे 2 प्रकार देखे थे निमित्तों के। अंतरंग किसे कहना याद है ना? बोलो।
अंतरंग
है वो। हाँ, आपने उसका उदाहरण दिया बरोबर सही है। हाँ, आप क्या कहेंगे? नियम रूप निमित्त, नियम रूप। और बहिरंग ने वो अन्य कोई चीजें हैं जो अन्य अन्य जीवों में अलग अलग हो सकती है, जिसको हम कहेंगे वेरिएबल निमित्त। जैसे गमन करने में धर्म द्रव्य तो सबके लिए तो निमित्त है ही है, फिर हम गमन करके हम कार में बैठकर गमन करके आए या अन्य जो कोई हम बाह्य में निमित्त कहेंगे वो तो बहिरंग निमित्त। समय दर्शन में हमने देखा था तो समय दर्शन होता है तो अंतरंग निमित्त कौन सा है? तो कर्मों की वहाँ जो कोई अवस्था है, उपशम है, क्षय है, क्षोपशम है। बहिरंग में क्या देखा? देव दर्शन है, रिद्धियों का देखना है, कहीं कहीं तो तीव्र वेदना है, कभी कभी जाति स्मरण है आदि जो अन्य अन्य जो कारण है वो वेरिएबल है तो उसको हम बहिरंग निमित्त कहेंगे। ये बात ख्याल में। अब निमित्तों का और भी 2 प्रकार से उसकी डिवीजन करने में आते हैं, एक है प्रेरक और एक है उदासीन। प्रेरक किसको कहना? जो इच्छावान और क्रियावान द्रव्य है। कौन से है इच्छावान? इच्छावान तो एक जीव द्रव्य है, जब तक वो इच्छा सहित वाला है तो हम कहेंगे उसको इच्छावान है। सिद्ध भगवान तो को तो इच्छावान नहीं कहेंगे, तो जो इच्छावान है। दूसरा क्या है? क्रियावान है। तो क्रियावती शक्ति किसमें किसमें है? तो जीव में है और पुद्गल में है। यानी इन शॉर्ट जीव और पुद्गल को हम प्रेरक निमित्त कहेंगे। हाँ, और धर्म अधर्म आकाश काल ये जो है वो कैसे है? उदासीन निमित्त। वो केवल कौन सा द्रव्य है इतना डिफ्रेंशिएट करने के लिए 2 नाम लिए, परंतु प्रेरक का अर्थ ये ज्यादा फोर्सफुल निमित्त है ऐसा नहीं है। उसको हम प्रेरक कहो, उदासीन कहो, अंतरंग कहो, बहिरंग कहो, वो कार्य में कुछ नहीं करता ये नक्की करने बस इतना ही। यहाँ तो हमने देख लिया। अब आगे जरा पढ़ के फिर हम अपने पेज पर चले जाएंगे। सुबह हाँ पुद्गल पुद्गल हाँ 69 70 पेज होगा ना
हाँ।
देखो यहाँ ये लिखा है निमित्त प्रेरक हो या उदासीन हाँ लास्ट पैराग्राफ गुजराती में 69 लास्ट पैराग्राफ मिला उसके नीचे का निमित्त प्रेरक हो या उदासीन परद्रव्यों का कार्य करने में वह कोई मदद नहीं करता दोनों की स्थिति समान ही है मिला ये लाइन मिली आगे के पेज पर देखें 70 पेज पर पहली लाइन क्या है
जीव इच्छाओं ने क्रियावान से माते प्रेरक निमित्त तेमज
तो उसके नीचे का दूसरा पैराग्राफ
निमित्त प्रेरक से उदासीन
निमित्त प्रेरक हो या उदासीन दोनों कैसे हैं परद्रव्यों का कार्य नहीं करते जो मैंने बताया वही लिखा है आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ तुम कहोगी निमित्तों का इतना निषेध करने में आता है तो उनका नाम ही क्यों लेते हैं फिर भी प्रश्न में ही उनकी भूल ख्याल में आती है क्या कोई निमित्तों का निषेध करता है कि निमित्तों से कार्य होने का निषेध करता है मान्यता का निषेध कि निमित्त से कार्य होता है इस मान्यता का निषेध है निमित्तों का निषेध नहीं है निमित्त होते ही है नहीं ना तो प्रश्नकर्ता ने क्या पूछा कि उसका निषेध क्यों कर रहे हैं उनका स्वरूप समझने की क्या आवश्यकता है दूसरा प्रश्न और कौन से कार्य में कौन से निमित्त होते हैं यह बताने का प्रयोजन क्या है बस उपादान से कार्य होता है कह दो ख्याल में ना ये हमारी आपकी सबकी मान्यता है अभी उसका उत्तर सुनो फिर से सुनो निमित्त का कोई भी निषेध नहीं कर रहा है निमित्त के कर्तृत्व का निषेध किया जा रहा है निमित्त अन्य द्रव्य का कार्य करता है ये मान्यता का निषेध हो रहा है ख्याल में डिफरेंस निमित्त तो होते ही है भगवान ने ही बताया कि कार्य में एक उपादान होता है एक निमित्त होता है जो होता है उसका ज्ञान कराया जाता है निमित्त से परद्रव्य में कार्य होता है इस मान्यता का निषेध किया जा रहा है निमित्त तो होता ही है परंतु वह अन्य द्रव्य के कार्य में किंचित मात्र मदद असर प्रभाव सहाय हेर फेर नहीं करता जब जब कार्य होता है तब तब दोनों कारण होते ही है एक उपादान कारण और दूसरा निमित्त कारण निमित्त होता है इसलिए उसका कथन भी किया जाता है देखो कार्य तो हमारे ख्याल में आता है ये पर्याय हुई अवस्था है ना तो द्रव्य की अवस्था तो हमारे ख्याल में आती है क्योंकि वह व्यक्त है देखो द्रव्य में जो है वो तो शक्ति रूप है और जो शक्ति व्यक्त होती है तो हमारे ख्याल में आती है हमारे में जानने की शक्ति है तो हम जानते हैं तो ये ज्ञान का कार्य हुआ तो हमें वो ख्याल में आया हर एक में लगा लो ये परंतु उपादान शक्ति अव्यक्त है वह ख्याल में नहीं आती एक बीज में वृक्ष रूप होने की शक्ति पड़ी है हमने उसको काट कर देखा तो अंदर कुछ नहीं दिखा परंतु जब वो वृक्षरूप हुआ तो वो शक्ति व्यक्त हुई तब हमारे ख्याल में आया कि ये शक्ति किसमें थी वो बीज में ही थी ख्याल में नहीं ये बात तो उपादान शक्ति अव्यक्त है वो ख्याल में नहीं आती निमित्त की उपस्थिति तो ख्याल में आती है इसलिए निमित्त ने ही कार्य किया इस तरह का भ्रम उत्पन्न होता है वो बीज में जो शक्ति वो ख्याल में नहीं आती परंतु हमने उसको अंदर बोया फिर मिट्टी डाली फिर पानी डाला रोज बराबर उसकी हिफाजत रखी ये ख्याल में आता है वो बीज की जो अंतरंग शक्ति है वो ख्याल में नहीं आती तो क्या भ्रम लगता है देखो हमारे कारण ये इसमें से वृक्ष होगा ये भ्रम है ना निमित्तों का स्वीकार ही नहीं करेंगे तो ज्ञान झूठा होगा क्योंकि निमित्त होता है अगर जो है उसका अस्तित्व ही नहीं मानेंगे तो हमारा ज्ञान सही नहीं है और निमित्त से कार्य होता है मानेंगे, अभी मानेंगे बात की, तो श्रद्धा झूठी होगी, मान्यता झूठी होगी। आगे, जब तक निमित्त से ही कार्य होता है यह मान्यता रहेगी, तब तक उस जीव की निमित्ताधीन दृष्टि छूटेगी नहीं। निमित्ताधीन दृष्टि का अर्थ क्या है? निमित्त से कार्य होता है ये मान्यता, अपने कार्य के लिए वह अन्य व्यक्ति तथा कर्म की ओर आशा भरी निगाहें लगाकर बैठेगा। निमित्त से कार्य होता है तो मुझे भी अपना कार्य करना है, तो कोई ईश्वर कोई गुरु मेरा कार्य कर देगा, या हमारा कर्म थोड़ा हटेगा तो मेरा कार्य होगा, ये उसकी मान्यता रहेगी। पर पदार्थों का महात्म्य कभी कम नहीं होगा। प्रत्येक द्रव्य सेल्फ सफिशियंट है और अपने उपादान से ही प्रत्येक पर्याय होती है। यदि ये बात ख्याल में आई तो हम इधर उधर पर पदार्थों की तरफ निगाहें लगाकर नहीं बैठेंगे, उनकी महिमा नहीं आएगी, अपनी महिमा आएगी। क्योंकि कोई चकाचौंध करने वाले दुनिया में कोई भी वस्तु देखेंगे हम, तो एक बड़ा हीरा देखा आपने तो किसकी महिमा आ रही है? हीरे की। तो जाना किसने? ये हीरे की महिमा जानने वाला कौन है? ये तो चेतन है, जीव स्वयं। ऐसे एक क्या, ऐसे कितने असंख्यात अनंत हीरे होते तो भी उसको जानने की शक्ति किसकी? हमारी है। तो जब हम ये ख्याल में आते कि ये ज्ञान यहाँ से अपने में हो रहा है, वो जानते हुए भी महिमा किसकी आएगी? क्योंकि ये है, ये किसने जाना? तो ज्ञान ने जाना। तो हर ज्ञेय की प्रसिद्धि में तो ज्ञान ही ज्ञान हमें भाषित होने लगेगा, अपनी महिमा आएगी। ख्याल में आती है ना बात में क्या है? क्योंकि हमें तो अभी तक बाह्य चीजों की ही और यानी ज्ञेयों की ही महिमा आती रही है, परंतु ज्ञेयों को जाना किसने, उसकी वैल्यू किसने निश्चित की? तो चेतन ने की। तो ये चेतन की महिमा आएगी हमें। और दृष्टि और ज्ञान कभी स्व की ओर नहीं मुड़ेंगे। क्यों? क्योंकि बारंबार वो ज्ञान और महत्ता तो पर पदार्थ की आती है, तो पर की महिमा आवे और ज्ञान यहाँ स्थिर हो जावे, ऐसा कैसा होगा? ज्ञान उसी पदार्थ में स्थिर होगा जहाँ की महिमा आती है। और जब तक सच्ची महिमा नहीं है और सच्चा उसका निर्णय नहीं है, तो उपयोग बारम्बार बाहर भटकेगा, अन्य अन्य विचार उसके मन में आते रहेंगे। ख्याल में आई बात? मैं अन्य पदार्थों का, धंधा व्यापार का, ग्रह गृहस्थी का करता हूँ आदि मान्यता रहेगी, तब तक कर्तृत्व बुद्धि का बोझ कभी हटेगा नहीं। मेरे बिना कुछ होता ही नहीं, मैं करता हूँ तो होता है, क्या क्या है, मैं इतना किया, मैंने इतना किया, मैंने इतना किया, ये क्या है? कर्तृत्व बुद्धि, और उसका बोझा लेके हम बैठे। पर कर्तृत्व के अहंकार और आकुलता के साथ जीव अपने शुद्धात्म स्वरूप का निराकुल वेदन नहीं कर सकता। ये हम आकुलता करते 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 निराकुल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, उसका टेंशन लिया है पर कर्तृत्व का, और हम टेंशन फ्री हो जाए, ये कैसी बात हो सकती है? ये तो दो भिन्न भिन्न चीजें, बिल्कुल विरुद्ध बातें हैं। प्रत्येक पदार्थ की एवं उनके कार्यों की अनंत स्वतंत्रता स्वीकार करने वाला जीव ही स्वयं के स्वतः सिद्ध स्वरूप में लीनता धारण कर सकता है। ये अपने में कैसे लीन होना, कैसे एकाग्र होना, ये बारंबार प्रश्न हो जाता है, कैसे ध्यान करना? तो जब तक पर की कर्तृत्व बुद्धि है, उसकी आकुलता है, पर की महात्म्य है, तब तक वो अपने स्वरूप में स्थिर हो ही नहीं सकता। इसलिए इन सभी जो कारणों की या कारण कार्य व्यवस्था के जो निश्चित हमें तत्व निर्णय करना चाहिए, ये इसीलिए। तो जब हम इन कार्यों की अनंत स्वतंत्रता को स्वीकार करेंगे, तो समय दर्शन रूपी कार्य सहज ही प्रकट होता है। वह कार्य प्रकट करने की भी आकुलता नहीं रही। क्यों नहीं? क्योंकि वो तो मेरे द्रव्य में है, तो वो बिल्कुल निश्चित समय पर प्रकट होने ही वाला है, और उसके लिए क्या करना है? पर अंतरंग में अपने में जैसा है वैसा स्वरूप निर्णय करके अपने में शांति से उसको जानते रहना है, बस और कुछ नहीं करना है। हम कुछ करना चाहते हैं, करू करू करू, ये वो मरू 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 है, क्या है ना? अब हम अपने विषय पर आते हैं। हम थे पेज नंबर 110 या 11, कौन से आपने निमित्त जहाँ लिखा है पत्रांक 10 में
109
पर।
हाँ,
देखो उसका पहला पैराग्राफ तो हमने देखा था कि जब कार्य होता है तो अनुकूलता का आरोप जिस पर आता है उसको निमित्त कहते हैं। निमित्त परद्रव्य के कार्य में कुछ मदद असर हेर फेर कुछ नहीं कर सकता। अब कहते जो निमित्त को नहीं मानेगा उसने एक कारण को ही नहीं माना, पांच समवाय में से एक निमित्त नाम के कारण को उसने माना ही नहीं, तो वो सही नहीं होगा, उसकी मान्यता उसकी और ज्ञान भी खोटा होगा। अब उसके बाद हमने जो देखा है, देखो उसके नीचे का पैराग्राफ यानी निमित्त में से वो तीसरा पैराग्राफ, जब मिट्टी स्वयं उपादान से मिला
110 पन्ना ऊपर,
हाँ पेज नंबर 110 गुजराती, जब मिट्टी स्वयं के उपादान से घड़ारूप परिणमन करती है तब कुमार चाक दंड आदि निमित्त भी उपस्थित रहते हैं। एक नहीं कहा, अनेक अनेक निमित्त है वहाँ पर। जब समय दर्शन रूपी कार्य होता है अर्थात जीव द्रव्य या जीव का श्रद्धा गुण स्वयं की योग्यता से सम्यक दर्शन पर्याय रूप से परिणमित होता है तब दर्शन मोहनीय कर्म की उपशमादि अवस्था पाई जाती है। यानी दर्शन मोहनीय मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी जो कर्म है वो उनका उपशम है, क्षोपशम है, क्षय, जो कुछ यथा योग्य सम्यक्त्व का जो भेद है वैसे उसमें उसकी अवस्था पाई जाती है। जो अंतरंग निमित्त है हमने सुबह देखे थे, यानी नियम रूप क्या है वहाँ पर कर्मों की उस अवस्था को वहाँ नियम रूप निमित्त है, अंतरंग निमित्त कहेंगे। जो अंदर में है वह अंतरंग ऐसा उसका अर्थ नहीं है, नियम रूप निमित्त को अंतरंग निमित्त कहते हैं। लिखा नहीं यहाँ पर सुबह यही बात हमने की थी, समय दर्शन प्रकट करने वाले किसी भी जीव में यह होगा ही, यानी वहाँ वो कर्मों की अवस्था ऐसी ही होगी। मिथ्या तो कर्म का उदय था वो अनुदय रूप में रहेगा वहाँ पर, उसमें बहिरंग निमित्त अन्य अन्य जीवों में अन्य अन्य हो सकते हैं, जिसको मैंने वेरिएबल कहा था। सच्चे देव गुरु शास्त्र आत्मानुभवी ज्ञानी द्वारा देशना की प्राप्ति उपदेश की प्राप्ति बाह्य निमित्त है, ये तो होता ही है, फिर भी वो किस में आएगा, बाह्य निमित्त में आएगा। अंतरंग निमित्त में क्या देखा, कर्मों की अवस्था हो सकता है, उसे देशना इस भव में या पूर्व भव में प्राप्त हुई हो। देखो ये सर्वथा निसर्गज तो होता ही नहीं, आपने शायद सुना होगा या पढ़ा भी होगा तत्वार सूत्र में, उसमें तो दो प्रकार बताए, अधिगमज और निसर्गज। इस भव में सम्यक तो जो होता है, समय दर्शन होता है तो वो उसमें देशना का जो निमित्त है, तो इस भव में उसको ज्ञानी गुरु द्वारा उपदेश मिला तो हम कहेंगे ये अधिगमज, अधिगम यानी ज्ञान होना, तो उपदेश की प्राप्ति हुई उसको तो हम कहेंगे अधिगमज। और ऐसा देखने में आता है किसी को इस भव में कोई ज्ञानी गुरु नहीं मिले थे फिर भी उसको ये सहज रूप से समय दर्शन हुआ है, कहीं कहीं तीरियंचों में भी पाया जाता है, मनुष्यों में भी ऐसा होगा, तो उसको क्या कहेंगे, निसर्गज। परंतु सर्वथा निसर्गज होता ही नहीं, इसका अर्थ क्या है, वो संगी पंचेंद्रिय है तो पूर्व भव में भी संगी पंचेंद्रिय रहा होगा, तो तीन भवन तक ये देशना हो सकती है, पूर्व भव की देशना इस भव में काम करती है, सुना था उस समय कुछ तत्व निर्णय भी हुआ था या कुछ उसके ज्ञान में बराबर धारणा में रहे, धारणा में मेमोरी में रहा था, उस समय कार्य नहीं हुआ था, अब जाके उसका कार्य होगा तो हम क्या कहेंगे, ये निसर्गज है। निसर्गज ने बिना उसके कोई अभी यहाँ, हाँ तभी इस भाव में उसका कार्य हुआ। हम देखते ना हमारे पिताजी या कोई बड़े बचपन में हमें कुछ कहा करते थे तो उस समय हम ऐसा ही करके टाल देते थे, बड़े हो जाते या शादी करके आते तो वो पिताजी की बात याद आती, वो ऐसा ऐसा कहते थे और उस बात को हम अभी फॉलो करते हैं, ऐसा होता है कि नहीं, अभी तो है ही नहीं हमारे पिताजी, वो जो बात हमको सिखाया करते थे या कुछ बताते थे वो आज हम याद करके उस अनुसार हम बिहेव करते हैं, आचरण करते हैं, तो हमने उनकी वाणी सुनी थी तो हम कहेंगे उनका उपदेश था हमारे, कि हमारे पिताजी ने हमको सिखाया था। अरे जब सिखाया था तो उसको हम उसको लक्ष्य भी नहीं दिया था उसका, और अभी उसका लक्ष्य कर रहे हैं। ये जो इसी बात है, वैसे ये जो ज्ञानी गुरु के द्वारा, ज्ञानी गुरु का अर्थ है या तो तीर्थंकर हो गए, आचार्य हो गए, उपाध्याय हो गए, साधु हो गए, या पंचम गुणस्थानी हो गए, या चौथे गुणस्थानवर्ती भी हो गए, जिसको हम ज्ञानी कहते हैं। और ज्ञानी गुरु के द्वारा मोक्ष मार्ग का जो उपदेश मिलता है, सात तत्वों का उपदेश मिलता है, स्व पर संबंधी जो उपदेश मिलता है, आत्मानुभव कैसे करना, ये जो उपदेश मिलता है वो उपदेश हमने सुना है, समझा है और याद में रखा है, धारणा में जिसको कहते हैं, तो वो कालांतर से भी काम कर जाता है। अब हम सुबह हमने वो गणधर की बात देखी थी ना, गणधर आए तो वाणी छूटी। तो गणधर का ऐसा नियम है कि जो भगवान के सामने स्वयं दीक्षित होते हैं, दीक्षा भगवान के सामने लेते हैं, वही गणधर होते हैं। अब वो तो कौन थे, इंद्रभूति आए तभी, अन्यमति वैदिक ब्राह्मण थे वो तो आए, समोसरण में इंद्र उनको लेके आया तो मानस स्तंभ देखा और मान गल गया। मान गल गया क्या अर्थ क्या है, सम्य दर्शन हुआ, क्योंकि वो वैदिक अवस्था में, वो ब्राह्मण की अवस्था में कहो या जो पूर्व की मिथ्या मान्यता के साथ, तो वो उनको भगवान की वाणी नहीं छूटेगी, क्योंकि भगवान की वाणी चार ज्ञानधारी गंधर के सामने छूटती है, जो उन्होंने वहां पर मुनि वेश यानी मुनिपना धारण किया है, केवल वेश नहीं मुनिपना धारण करके भावलिंगी संत बने हैं भगवान के वहां सामने, उन्हीं के निमित्त से वाणी छूटेगी। तो जब गंधर यानी इंद्रभूति आए थे तब हम उसको गंधर नहीं कहेंगे, इंद्रभूति आए थे तो मिथ्या दृष्टि थे, गृहित मिथ्या दृष्टि थे, क्योंकि अन्य मतियों का प्रचार करने वाले, उसका उपदेश देने वाले महंत होके बैठे थे। तो यहाँ आए और मानस स्तंभ देखा, तो मानस स्तंभ देखा का अर्थ क्या है, जिन बिंब का दर्शन हुआ, जिनेन्द्र भगवान की मूर्ति देखी तो विचार किया और वहाँ उनके सम्य दर्शन की प्राप्ति हुई। क्या इंद्रभूति को भगवान महावीर के उपदेश से सम्य दर्शन हुआ, नहीं, क्योंकि उनके उपदेश से सम्य दर्शन हुआ कहेंगे तो मिथ्या दृष्टि के कारण उपदेश निकला और उनको सम्यक हुआ मानना पड़ेगा। मुकुंद भाई ख्याल में आती बात, वो जब आए थे तभी मिथ्या दृष्टि थे, तो मिथ्या दृष्टि के निमित्त से तो वाणी नहीं खीरी है, गणधर की उपस्थिति में वाणी खीरती है। तो जब वाणी खीरी तब तो वो भावलिंगी संत थे, तो उनको सम्यक कब हुआ, वाणी सुनने के पहले हुआ कि नहीं, वाणी सुनने के पहले समय दर्शन हुआ, वाणी सुनने के पहले भावलिंगी अवस्था प्रकट हुई, तो उनको उपदेश किसने दिया, तो ये पूर्व भव का उपदेश तभी मिला था उनको, तो भगवान की मूर्ति देखी तो वो पूर्व भव की देशना काम आई और उनको समय दर्शन हुआ, फिर अंदर में गए भगवान के सामने, वस्त्र निकाल कर मुनि दीक्षा अंगीकार की और ध्यान में लीन हो गए तो सातवां गुण स्थान प्रकट हुआ, फिर चार ज्ञान प्रकट हुए उनके, मन परे ज्ञान अवधि ज्ञान भी प्रकट हुआ, समय दृष्टि तो थे ही थे, तब जाके वाणी खिरी। क्यों इतना क्यों डिफिकल्ट लग रहा है, अभी सिंपल शब्दों में बता दें, इंद्रभूति वायुभूति अग्निभूति की स्टोरी मालूम है, वैदिक ब्राह्मण थे, जैनी तो नहीं थे, सम्य दृष्टि नहीं थे, ग्रीक मिथ्या दृष्टि, वो अपने अपने शिष्यों सहित आए, आते ही वाणी छूटी क्या, आपको तो मालूम नहीं है, तो नहीं, क्यों, वो जब मुनि अवस्था धारण करेंगे, सम्य दर्शन के साथ मुनि अवस्था धारण करेंगे तब जाके उनको मन परे ज्ञान भी प्रकट होगा, यानी चार ज्ञान हो गए, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, तब ये जो पात्रता है दिव्य ध्वनि झेलने की, समझने की पात्रता हुई, तब वाणी छूटी। तो भगवान की वाणी सुनकर उनको सम्य दर्शन नहीं हुआ, पहले हो गया, कब हुआ, तो मानस स्तंभ में जो मूर्ति विराजमान है उसको देखकर उनको समय दर्शन हुआ। तो उन्हें उपदेश किसने दिया? तो कहते पूर्व भोग का उपदेश सुना था, वो अभी काम आया। ख्याल में आई ना बात? मुकुंद भाई ख्याल में आती बात?
उनको पहले ये मानना चाहिए कि भगवान की वाणी छूटे तब उनको जिलने वाले
पात्र वहाँ होना ही
चाहिए,
बिल्कुल होना चाहिए।
और यदि वो पात्र नहीं होता तो भगवान की वाणी नहीं छूटती,
इसलिए तो 66 दिन नहीं छूटी।
66 दिन नहीं छूटी, परंतु इसका अर्थ नहीं कि निमित्त आया इसलिए कार्य हुआ। आने की तभी योग्यता थी, और वो योग्यता कहाँ पड़ी थी? वो भाषा वर्गणा में, उपादान कहाँ था? भाषा वर्गणा में। तभी वो वाणी रूप परिणमने का उसका कार्य होना था, और जब कार्य होना था तो वो भगवान का वचन योग भी निमित्त है, वही सुनने वालों का पुण्य का उदय भी आया तो उसको निमित्त कहेंगे, वहाँ गणधर आए तो उनको हम निमित्त कहेंगे। निमित्त तो अनेक होगी ना वहाँ पर। हमें बाह्य दृष्टि वालों को क्या दिखता है? देखो वो नहीं था ना इसलिए वाणी नहीं छूटी, वो आया ना इसलिए वाणी छूटी। परंतु ये उसके पीछे का रहस्य हमें जानना चाहिए, इसलिए इसकी चर्चा की।
यहाँ पर देखो हम जो देख रहे हैं कि साक्षात वो जिनेन्द्र भगवान की वाणी जीने की लायक ऐसा कोई वहाँ जीव था जब तो वो वाणी थी। तो अभी क्या है, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि सामने वक्ता के सामने श्रोता हो गए न हो गए, टेलीफोन पे सब बातें चलती हैं, तो सामने वाले व्यक्ति का कितना वहाँ योगदान है तो जाने बिना लाइक मशीन बोलते नहीं। टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, सब उसका फायदा तो लेना चाहिए, लेकिन हम ये भी सोचे कि वक्ता जो बोलेगा, क्योंकि अभी तो कोई वितरागी वक्ता है नहीं, उसका कोई ना कोई बीच में ये है क्या बोलते हैं तकलीफ है कि वो रागी है, तो जो प्रोज एंड कॉन्स में ये एक नुकसान है। और सामने वाले समझो 10 आदमी बैठे हैं कि 5 आदमी बैठे हैं, उसका भी कोई अंदाजा आना कठिन।
ये सहज उनके निमित्त से, जैसे आपके चेहरे पर जो कोई जानने की उत्सुकता है या अभी नहीं समझे, हमने पूछा ना शीला बहन क्यों क्या हुआ, तो आपके चेहरों पर आपके आंखों की तरफ देख के हमें पता चलता है किसने कितना ग्रहण किया है, और उसको वैसा सहज भाव से वो उपदेश दिया जाता है। हम कोई समझ सोच समझ कर ऐसा प्लानिंग करके नहीं आते कि हमें यही बात बतानी है, वो सहज रूप से उसकी ये श्रोताओं की योग्यता से बात निकलती। भाई हमने कितने बार हमें कुछ सोच के निकलते नहीं, आज हमें यही विषय लेना है और कुछ अलग ही बात निकलती है। हमेशा अभी इतनी जगह हम जाते रहते हैं ना, तो सहज रूप से ये तो कहते हैं जो सुनने वालों की योग्यता से वो बात निकलती है। इसलिए ये जो क्या कहना चाहते हैं, सामने कोई हमारे सामने बैठे है तो उनके निमित्त से वो बात सहज, क्योंकि अभ्यास तो बहुत अनेक शास्त्रों का हुआ है, और कोई विशिष्ट हमें सिद्धांत समझाना है तो उसके उदाहरण कहो, उसकी जो कोई बात है वो सहज रूप से आती रहती। ऐसा कोई हमने अंदर से कुछ याद करके रखा है या कोई मगप करके रखा है, रट के रखा है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, सहज रूप से ये बातें निकलती है ना। ये कहते थे कि कभी कभी क्या होता है कि सामने रखो और आप बोलो तो किसको देख के बोले, माइक को देख के बोले क्या, ऐसा होता है। ये बात बताना चाहते, अभी इतना ही हम दो लाइन पढ़ के इसको आगे चलेंगे। देखो बहिरंग निमित्त हमने देखा अन्य अन्य हो सकते हैं, और ज्ञानी का उपदेश बाह्य निमित्त है, वो देशना उसे इस भव में मिली या पूर्व भव में है। जिनबिंब दर्शन, जाति स्मरण, जाति स्मरण समझते हैं, पूर्व भव की याद आना उसको कहेंगे जाति स्मरण, यानी पूर्व भव में हमने कोई उपदेश सुना है वो इस भव में याद आना उसको कहेंगे जाति स्मरण। नरक की तीव्र वेदना, स्वर्ग का ऐश्वर्य आदि के निमित्त से जीव अंतर्मुख होकर विचार करने लगता है और स्वयं के शुद्धात्म स्वरूप का चिंतन करके उसमें एकाग्र होते ही शुद्धात्मानुभूति प्रकट होती है, समय दर्शन की प्राप्ति होती है। श्रीमद जी को भी जाति स्मरण था ना, जाति स्मरण ज्ञान से, वो तीर्थंकर है आदि, उन्होंने अंदर से बहुत उनको वो सारा ज्ञान प्रकट होता था कि नहीं नहीं ऐसी सच्ची वाणी है वगैरह वगैरह, बहुत सी बातें ऐसी है।
स्वर्ग का ऐश्वर्य देखिए, जीव को जो अपना चिंतन होता है वो कैसे हो?
देखो, स्वर्ग में गया कोई यहाँ से मरकर, यहाँ तो विशिष्ट वातावरण था और जाते वहाँ जी उत्पन्न हुआ अंतर्मुख में, अरे ये क्या है, आश्चर्य हो जाता है, ये ऐसी बात है? तो वो बात सोचता है, अरे मैं कौन था, कहाँ था या आदि कुछ, उसको तो वहाँ तो अवधि ज्ञान होता है, तो ख्याल में आता है, अरे ये तो मैंने ऐसा ऐसा पुण्य किया था या उसका ये फल है, यानी जिन धर्म की उसको महिमा आती है या खुशी के उपदेश की महिमा आती है, वो केवल महिमा से नहीं होता है, उस समय भी वो जो तत्वों का चिंतन होगा कि मैं तो जानने वाला तत्व हूँ, ये तो सब भिन्न बात है, अभी ये जो हमने जो ये सारे तत्वों का निर्णय करने के लिए जो सिद्धांत देखे हैं, उसका विचार करके अंतर्मुख हो जाता है और उसको सम्यक की प्राप्ति होती है। या कभी कभी जिनेन्द्र भगवान का स्वरूप देखकर, जिनबिंब देखकर, अभी हम देख रहे हैं ना अभी भूगोल में सर्वत्र इतने जिनबिंब आदि है, तिरियंशों को भी होता है, वो भी जिनबिंब देखते हैं तो वितरागी शांत मुद्रा तो ख्याल में आती है ना, तो वो भी अंतर्मुख होकर विचार करने लगते हैं, उनके भी सम्यक की प्राप्ति होती है। होता है ऐसा, ये श्रवण बेलो भूगोला में एक बड़ी मूर्ति है ना 58 फुट वाली, हम गए थे तभी वहाँ का कुछ अभिषेक वगैरह प्रोग्राम था, तो हम जैसे बैठे तो पीछे से बड़े बड़े मंकी बंदर वो तो हो रहे थे, वो भी एक तरह ऐसे देख रहे थे, हमने बोला ये भी संगी पंचेंद्र जीव है, उनके भी मन में होता होगा ना कि ऐसे जो ये जो उनकी वितरागी मुद्रा तो देखने में आती है, शांत परिणाम तो चेहरे में जो झलकते है, तो वो भी जीव विचार करने इतनी तो उसकी पात्रता है कि नहीं है,
उसको भी कुछ याद आता होगा कि नहीं?
याद आता है या वो देखकर, हाँ क्योंकि देखो जीव तो वही का वही चल रहा है ना, पूर्व भव में उसने भी कुछ सुना हो सकता है, और ये ऐसे भी विचार करते कि ऐसी कैसी दशा ये, तो मैं तो भिन्न हूँ, ये मुझ में उठने वाले राग में उस रूप नहीं, ऐसे कुछ जो भी उसके
जो शरीर की जो क्या बोलते जो साधन है वो तो उसकी सजा है, उसकी कर्म की सजा है।
नहीं, सजा वगैरह कुछ नहीं है, वो चार गतियाँ हैं बस, संगी पंचेंद्र जीव है, वो तो उसकी कोई बात नहीं। चलो अभी हम यही रुकेंगे, बोलो 24 भगवान की।